श्लोक वक्त्रम चापर वक्त्रम च सूक्ष्मवासत्वम च भेदकम चिह्नमाख्यायिकायश्चेत प्रसंगेन कथास्वपि। वक्त्र और अपर वक्त्र छंदों से और उच्छ्वासों से युक्त होना यदि व्याख्या आख्यायिका को कथा से अलग करने वाली निशानी है तो कथाओं में भी प्रसंग के अनुसार आर्य आदि के समान वक्त्र और अपर वक्त्र छंदों का समावेश क्यों नहीं हो सकता। श्लोक आर्यादिवत प्रवेश किम न वक्त्रापर वक्त्रयोः भेदस्य दृष्टौ लंभादिरुच्छ्वासौ वास्तु किम ततः। लंभ आदि नाम वाला परिच्छेद जब कथाओं में भी दृष्टिगोचर होता है तब उसका नाम उच्छ्वास हो तो उससे क्या बिगड़ता है। वक्तृभेद के आधार पर क आख्यायिका और ख कथा में भेद का खंडन पिछले श्लोकों में करने के पश्चात भामह द्वारा प्रोक्त आख्यायिका और कथा के दो भेदक धर्मों का खंडन आचार्य दंडी ने प्रकृति दो श्लोक में किया है। भामह ने आख्यायिका में अवसर आने पर तथा भावी अर्थ की सूचना देने को वक्त्र एवं अपर वक्त्र नाम के छंदों के प्रयोग का विधान किया है एवं कथा में उनके प्रयोग का निषेध किया है। हर्षचरित में वक्त्र अपर वक्त्र आर्या वसंत तिलका शार्दुल विक्रीड अनुष्टुप स्त्रगधरा आदि छंदों का प्रयोग यत्र तत्र किया है। कादंबरी में ऐसी स्थिति में आर्या का प्रयोग किया गया है तब कथा में आर्या का प्रवेश यदि मान्य है तो वक्त्र और अपर वक्त्र छंदों का प्रवेश क्यों नहीं हो सकता। भामह ने उच्छ्वासों का आख्यायिका में विधान और कथा में निषेध किया है। सुबंधु बाणभट्ट रुद्रट और अभिनव गुप्त आख्यायिका में उच्छ्वासों को आवश्यक मानते हैं। दंडी ने इस मान्यता का खंडन किया है। कथा का विभाजन अगर किया जाता है तो नाम चाहे उच्छ्वास दे चाहे अन्य कोई, इससे क्या अंतर आना है। गुढ़ाढ़ की बृहत कथा लंबो अथवा लंबो में विभाजित बताई जाती है। इस प्रकरण में रत्नश्री और हृदयंगमा में उच्छ्वास के स्थान पर आश्वास शब्द घृत व्याख्यात है किंतु एक तो भामह सुबंधु और बाण ने उच्छ्वास शब्द दिया है, दूसरे दंडी का दशकुमार चरित बाण का हर्ष चरित उच्छ्वासों में विभाजित है। इससे सिद्ध होता है कि उस युग में आख्यायिका के लिए उच्छ्वास शब्द ही प्रचलित रहा है आश्वास नहीं। आश्वास शब्द विश्वनाथ कविराज द्वारा प्रयुक्त हुआ है अतः लगता तो यह है कि दंडी के ग्रंथ की प्रतियों में आश्वास शब्द का प्रवेश साहित्य दर्पण के प्रभाव क्षेत्र में साहित्य दर्पण के बाद हुआ है। श्लोक तत्कथाख्यायिकेत्ये का जाति संज्ञा द्वयान्विता अत्रैव अन्तर्भविष्यन्ति शेषाश्चाख्यान जातयः। इसलिए कथा और आख्यायिका यह काव्य का एक ही प्रकार दो नामों से सुशोभित है। इतना ही नहीं आख्यानों के बाकी प्रकार भी इसी एक जाति में समाहित हो जाएंगे। आख्यायिका और कथा के भामहप्रोक्त भेदक तत्वों की निस्सारता बताने के बाद आचार्य दंडी ने अपना निष्कर्ष प्रकृति श्लोक में दिया है कि गद्य काव्य का एक ही प्रकार इन दो नामों से प्रसिद्ध है। इनमें तात्विक भेद नहीं है, उपर्युक्त आधारों पर उन्हें अलग अलग बताना कामकारिता है, युक्ति युक्त नहीं। जैसे मुक्तक आदि भेद सर्ग बंध महाकाव्य में भी समा जाने के कारण अलग से बताए जाने योग्य नहीं है, वैसे ही गद्य काव्य के सभी छोटे खंड कथा परिकथा कथानिका कहानी आदि भेद गद्य काव्य के इसी बड़े स्वरूप में समाहित हैं। उन्हें इसी से गतार्थ समझना चाहिए। आख्यान के उदाहरण के रूप में वादी जी ने कुसुमंजरी, तरुण वाचस्पति ने दशकुमार चरित और हृदयंगमा में शकुंतलोपाख्यान बताए हैं। श्लोक कन्या हरण संग्राम विप्रलंभो दयादय सर्ग बंध समा एव न ते वैशेषिका गुणा। श्लोक कवि भाव कृतम चिन्हम न्यत्रापि न दुष्यति मुख मिष्टार्थ संसिद्धौ किम ही न स्यात कृतात्मनाम। कन्याहरण युद्ध वियोग और नायक का उत्कर्ष आदि विषय सर्गबंध के समान ही हैं, वे आख्यायिका को कथा से पृथक करने वाले भेदक धर्म नहीं हैं। कवि के द्वारा अभिप्राय विशेष से प्रयोग किया हुआ चिन्ह यदि भामह को अभिष्ट विधा से अन्य विधा में भी है तो कोई बुराई नहीं है। व्युत्पन्न लोगों को अभिष्ट अर्थ की सम्यक सिद्धि में कौन चीज मुहाना नहीं बन जाती? भामह ने आख्यायिका और कथा के जो भेदक तत्व बताए हैं वे सब बाह्य वर्ग के हैं और भामह ने उनका कथन कथा में निषेध के द्वारा किया है। उन सब का खंडन आचार्य दंडी ने 1.25.27 में करके 1.28 में खंडन का उपसंहार निष्कर्ष कथन के द्वारा कर दिया है। भामह ने काव्यालंकार 27 में दो बातें विधि रूप में कही हैं तथा कथा के प्रकरण में अन्य बातों की तरह उनका खंडन नहीं किया है। वे दो बातें आख्यायिका से संबंध हैं या कथा से, यह भी भामह के ग्रंथ में स्पष्ट नहीं है। दंडी ने भी गोलमोल ढंग से उनका खंडन व्यस्त क्रम में किया है। कन्याहरण, युद्ध वियोग और नायक का अभ्युदय आदि गुण भामह को चाहे आख्यायिका में अभिप्रेत हो या कथा में, पर ये सर्गबंध महाकाव्य के समान सभी प्रकार के काव्यों में वीर रस के अंतर्गत वर्णन के लिए अपेक्षित होते हैं। इन्हें किसी एक विधा से जोड़ना उचित नहीं है। वस्तुतः ये सर्वविध काव्यों में अपेक्षित होने के कारण व्यावर्तक धर्म किसी एक विधा को दूसरी विधा से पृथक करने वाली विशेषता नहीं बन सकती। भामह द्वारा काव्यालंकार उत्तरार्ध में विहित तत्व का खंडन करने के बाद आचार्य दंडी ने पूर्वार्धोक्त लक्षण का खंडन किया है। कवि अपने काव्य में किसी अभिप्राय से अपनी कोई खास छाप छोड़ने वाला कथन कर दिया करते हैं, पर यह आख्यायिका में ही किया जाए या कथा में ही, यह कोई नियम नहीं है। ऋग्वेद के सप्तम मंडल के ऋषि वशिष्ठ ने अपने बहुत से सूक्तों के अंत में यूयम पात स्वस्ति भी सदा नह यदि रखा है, तो इंद्र लव ने अपने गायत्री निबंध सूक्त के प्रत्येक मंत्र के तृतीय पाद में कुवित सोमस्यापाम इति पदावली रखी है। इसी प्रकार भारवी के किरातार्जुनियों को लक्ष्मी पदांक और माघ के शिशुपाल वध को श्री शब्द के प्रयोग के कारण श्री पदांक कहा जाता है। काव्य रचना में परिनिष्ठित व्युत्पन्न कवि जो कहना चाहते हैं कहीं भी किसी भी विधा में कह सकते हैं। इस विवरण से यह स्पष्ट है कि दंडी ने आख्यायिका और कथा के भेदक लक्षणों का खंडन तो युक्ति पूर्वक कर दिया, परंतु गद्य काव्य की इस विधा का स्वरूप उन्होंने नहीं बताया। इसका कारण संभवतः यही है कि भित्ति की दृष्टि से सर्गबंध और आख्यायिका में कोई अंतर नहीं होता। अंतर केवल निबंधन के प्रकार पादबद्धता या अपादबद्धता का है। अतः आख्यायिका को लक्षण की दृष्टि से सर्गबंध से पृथक नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से नाटक प्रेक्षार्थ होने के कारण सर्गबंध से कुछ भिन्न प्रकार हो जाता है। काव्यांग कल्पना का जहाँ तक प्रश्न है, नाटक और सर्गबंध में कोई अंतर नहीं है। वस्तुतः भरत की समूची काव्यांग कल्पना प्रेक्षार्थ विवरण को छोड़कर विशाल भित्ति वाले सभी प्रकार के पद्य बंध, सर्गबंध, महाकाव्य गद्यबद्ध, आख्यायिका आदि और गद्य पद्यबद्ध चंपू काव्यों पर लागू होती है। तथापि भामह द्वारा विहित तथा दंडी द्वारा निषिद्ध बातों को यदि गद्य काव्य का लक्षण माने तो निम्न बातें सामने आती हैं। अ गद्य काव्य की भाषा संस्कृत, पाक्ति या अपभ्रंश कोई भी हो सकती है। आ उसकी कथा का विभाजन भी किया जा सकता है तो कथा अविच्छिन्न प्रवाहमय भी रखी जा सकती है। ई कथा का वक्ता नायक स्वयं कवि या कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध कोई पात्र हो सकता है। ई मौके ठोके पर पद भी दिया जा सकता है। उ कथा वस्तु इतिवृत्ति यदि विभाजित की जाती है तो परिच्छेदों के आदि में भावी अर्थ के सूचक पद दिए जा सकते हैं। री गद्य काव्य का सबसे विशिष्ट तत्व होता है नर्तन सा करता ओजस्वी गद्य। री रस भाव आदि सर्गबंध महाकाव्य के समान ही समझने चाहिए। दंडी द्वारा आख्यायिका और कथा भेदों का खंडन कर दिए जाने पर भी परवर्ती काव्य शास्त्रियों में ये भेद चलते ही रहे। हालांकि किसी ने भी दंडी की युक्तियों का खंडन करके इन भेदों की पुष्टि नहीं की। अग्निपुराण में भामह के कथन के अतिरिक्त जो कहा गया है वह यूँ है। आख्यायिका क बाह्य तत्व अकर्ता के वंश की प्रशंसा विस्तार से गद्य के द्वारा की जाए। आ रीतियों, वृत्तियों और प्रवृत्तियों का प्रयोग हो। ई चूर्णक गद्य की प्रचुरता हो। कथा क बाह्य तत्व अकर्तृवंश प्रशंसा श्लोकों में संक्षेप से की जाए। आ मुख्य कथा के अवतरण के लिए एक और कथा दी जाती है। ई कथा या तो अविराम चलती है या उसके विरामों को लंबक संज्ञा दी जाती है। ई उसमें कोई श्लोक दिया जाता है। इस विवरण से यह स्पष्ट है कि अग्निपुराण कारक के मत में भी आख्यायिका और कथा में भेद बाह्य आधार पर ही है, आंतरिक दृष्टि से दोनों में कोई भेद नहीं है। रुद्रट के काव्यालंकार में और अग्निपुराण में इस विषय में पर्याप्त साम्य है। प्रकृति श्लोक के पूर्वार्ध में किए सामान्य कथन का समर्थन उत्तरार्ध में साधर्म से सामान्य कथन के द्वारा किया है, अतः यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार है।